ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध 29वां अध्याय। अध्याय का नाम है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। श्लोक संख्या 1। श्री बादरायणी उवाच। भगवान अपि तारात्रि शारदोत फुल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री बादरायणी उवाच। श्री बादरायण व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव को स्वामी ने कहा भगवान कृष्ण अपि यद्यपि तहा वे रात्रि राते शारद शरदकालीन उत्फुल खिले मल्लिका चमेली के फूल वीक्ष्य देखकर रत्तुम प्रेम का आनंद लेने के लिए मन चक्रे मन में निश्चय किया योग माया असंभव को संभव बनाने वाली उनकी आध्यात्मिक शक्ति का उपाश्रिता सहारा लेकर। अनुवाद। श्री बादरायणी ने कहा श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य, जो भी हम भगवान कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद की पूर्णिमा की अर्ध रात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के नाच नृत्य का वर्णन करते हुए इस आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण तथा आत्मतुष्ट हैं और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है। भौतिकवादी व्यक्ति तथा निर्विशेष दार्शनिक जन श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रमाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसी ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेममय कार्यकलाप संपन्न कर सकता है अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता, जबकि हमारा तथाकथित प्रेमालाप कोरा या विकृत प्रतिबंध है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबंध हो ही नहीं सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों की अल्प अकल्पनीय भाव दशा को प्रतिबिंबित करता है जो श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की यह मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकारते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेमालापों का अनुगमन करते हैं जिन्हें वे वास्तविक और आध्यात्मिक भी मानते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इसी घोषणा के साथ होता है कि परम ब्रह्म ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार पर आदि एक की भद्दी खोज के प्रयास में हुआ। माधुर्य प्रेम की जो मनुष्य का महत्वपूर्ण पहलू है, उसे परम सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभूत माधुर्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, जिसमें यही प्रेम अपनी परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब कृष्ण ने शरदकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया, तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया योग माया उपासना। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंधि तथा सुकुमारपन के साथ ही अपनी चातुरी तथा संगीत नृत्य में दक्षता के कारण आकर्षक लगती है। इन सबों में वृंदावन की तरुणी गोपियां, जो कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, सर्वाधिक आकर्षक हैं। इस अध्याय में यही बताया गया है कि किस तरह कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया, यद्यपि इन घटनाओं के समय श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के बालक थे, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने उल्लेख किया है। सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के साक्षी बने। जब कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है, तो अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है कि और बड़े निराश हो उठते हैं कि भगवान अपने दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों का आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि श्री कृष्ण आदि कामदेव है और उनकी उत्तेजक माधुर्य लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया जाएगा। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ तथा उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य प्रेम परम प्रेमालाप को प्रदर्शित किए बिना कैसे बीते जाने देते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी का वक्तव्य उद्धृत किया है, कई शोरम सफली करोति कल्याण कुंजे विहारम हरि। भगवान हरि वृंदावन के कुंजों में विहार प्रेम विला करके अपनी कैशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। ओम अज्ञानस्य मिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने बलराम जयंती का उत्सव मनाया, और बलराम जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी के बीच में जो 7 दिन का जो अंतर है, इसमें हम हमेशा कृष्ण लीला यानी कि भागवतम के दशम स्कंध से चर्चा करते हैं। तो पिछले कई सालों से ये एक हफ्ते में भागवतम दशम स्कंध से चर्चा करते 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 हम 29वें अध्याय तक पहुंच गए, और ये अध्याय बहुत स्पेशल है। ये 5 रसाध्याय जो कि श्लोक अध्याय अध्याय संख्या 29 से 33 तक भगवान की रासलीला का वर्णन है। तो वैसे भी इस साल की जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है? गोल्डन जुबली 50th ईयर, और उसमें हमें भगवान की रासलीला का वर्णन चर्चा श्रवण करेंगे, तो एक्स्ट्रा स्पेशल। तो जब मैंने कल देखा कि ये रासलीला का चैप्टर है, तो पहले कुछ घबराहट हुई, रोमांच कंपा शुरू हुआ, तो बोले कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि रासलीला क्या है और क्यों भगवान करते हैं, इस पे ज्यादा चर्चा करें, कैसे करते हैं वो हमारी समझ के बाहर है। तो रासलीला को लेकर बहुत से आप लोगों ने भी सामना किया होगा, जब लोगों के पास जाते हैं, उनके पास एकमात्र हथियार होता है कृष्ण को नाम मानने का, रासलीला। क्योंकि आपके भगवान कैसे हैं, झूठ बुलवाते हैं युधिष्ठिर से, वो धर्मराज थे, उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया, और कर्ण का जब पहिया फंस गया था तो अर्जुन को बोला मार दो, और दुर्योधन और भीम की लड़ाई हो रही थी, भीम को इशारा किया जंगा में मारो, ये कैसे भगवान है। चलो ये सब तो कोई बात नहीं, पर स्त्रियों के साथ मध्य रात्रि में नृत्य करना ये कहाँ का चरित्र है, कि ऐसे भगवान क्यों, इतने अनैतिक झूठ बोलने वाले ऐसे भगवान की आप पूजा करते हो, कुछ तो हो यद्यत आश्रुति श्रेष्ठ। और भगवान तो धर्म की स्थापना करने आते हैं, किस तरह का धर्म है परिस्थितियों के साथ नृत्य करें झूठ बोलवाए, जो चाहे जो झूठ बोला बोला ही नहीं कभी झूठ, धर्मराज जी ने उनसे झूठ बोलवाया, सारे जो क्षत्रिय धर्म के नियमों को तोड़ दिया, तो ये किस तरह का आपके भगवान है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को संन्यास दिया और सन्यासी से पूछा उनकी आंखों में आंखें डाल के, डू यू रियली बिलीव कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो बेचारा काफी उत्तर नहीं दे पाए। और हमारे सामने जब ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं तो हमारा भी विश्वास टकमगा जाता है कि क्यों किया भगवान ने ऐसा, रासलीला क्यों किया, क्यों और भी तो लीलाएं कर सकते थे, पर ऐसा स्कोप ही क्यों दिया, भगवान तो जानते थे कलयुग आने वाला है। और कई लोग भगवान की रासलीला का लाभ उठा के स्वयं रासलीला करते हैं, बोले कृष्ण ने की तो हम भी करेंगे, तो वो भी संसार में कितना उत्पाद मचा रहा है। वास्तव में रासलीला का टॉपिक है, ये आध्यात्मिक जीवन का PhD टॉपिक है, और जिसका भी आध्यात्मिक जीवन में जन्म नहीं हुआ वो लोग इस पर कमेंट मारते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से। हम श्रीजी गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब तक भगवान की शक्तियों को हम अचिंत्य नहीं मानेंगे तब तक हम भगवत तत्व समझनी पड़ेंगे। भगवत तत्व क्या हुआ, भगवत्ता ही क्या हुई जो चिंतनीय हो, भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम प्रयास करेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होंगे, वर्तमान आचार्यों का, सभी भक्तों का, कि हम कुछ समझ पाए भगवान के ये जो रासलीला है, ये भगवान के माधुर्य की, भगवान के प्रेम के, भगवान की करुणा की परिकाष्ठा है, भक्तों के समर्पण की, गोपियों के समर्पण की परिकाष्ठा है। ये टॉप मोस्ट आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में। तो इसको श्रवण करने मात्र से ही अगर सही प्रमाणिक स्रोत से सुना जाए हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो ये रासलीला की क्या महत्ता है और इसको हम कैसे, जो तरह तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं इनका, हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। आप में से कितने लोगों को जब रासलीला की चर्चा होती है या रासलीला का वर्णन होता है तो कुछ डाउट्स उत्पन्न होते हैं, क्यों भगवान ने ऐसा किया, नहीं होते? अगर होते हैं तो हम सही स्थिति में हैं, नहीं होते तो कुछ गड़बड़ है, यानी कि हमने अंधविश्वास में सबको स्वीकार कर लिया या फिर बहुत ही ऊंचा लेवल है। क्योंकि जब परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, उन्होंने भी यही डाउट रखा भी कृष्ण जो है धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता, धर्म के अभिरक्षक ने ऐसा आधार्मिक कार्य क्यों किया, कौन सा कार्य है इतना आधार्मिक है, जो स्वयं धर्म स्थापना करने आए, ऐसा उनकी क्या मजबूरी थी कि उनको ऐसा कार्य करना पड़ा। तो सही सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक में इन 5 अध्यायों में बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं और उससे हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है, जैसे यहां भी तात्पर्य में लिखा जा रहा है कि रासलीला की आध्यात्मिक प्रकृति को समझना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये रासलीला भगवान के साथ में धाम से अवतरित हुई है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो इन 5 अध्यायों से, मुख्यतः इस 29वें अध्याय से कोई 10 कारण निकलते हैं जिससे मालूम चलता है कि ये रासलीला पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। नंबर 1, जैसा कि तात्पर्य में लिखा है, जब ये रासलीला हुई तो कृष्ण की कितनी आयु थी, केवल 8 वर्ष, 8 वर्ष के वो बालक थे। 7 वर्ष की उम्र में अमावस्या के अगले दिन उन्होंने गोवर्धन उठाया, अमावस्या के अगले दिन आता था भारतीय द्वितीय का पर्व जिसे हम भैया दूज के नाम से मनाते हैं, तब इंद्र ने वर्षा करनी शुरू कर दी, 7 दिन तक उन्होंने वर्षा की, 9वें दिन सुरभि गाय ने आके भगवान का अभिषेक किया, 10वें दिन सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन करने लगे, एकादशी सामने रखी, द्वादशी के दिन नंद महाराज अपने गोपों के साथ यमुना में स्नान करने गए, वहां अर्जुन जी ने उनको कैद कर लिया। तो इस ढंग से करते हुए पूरा कार्तिक का महीना जो था वो समाप्त हुआ और शरद पूर्णिमा अंत में आती है। तो भगवान की आयु उस समय 7 वर्ष की थी, 1 वर्ष और उनको प्रतीक्षा करना पड़ा और 8 वर्ष की जब आयु हुई भगवान की, शरद पूर्णिमा के दिन जब ऐसा सुंदर वातावरण था, चंद्र पूरा खिला हुआ था और चमेली के फूल की सुगंध आ रही थी, तो भगवान ने सोचा क्यों ना, ये इतना सुंदर वातावरण है, मैं अपने परम भक्त गोपियों की इच्छाओं की पूर्ति करूं। उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा था कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो ये सुंदर रात्रि है, पूर्णिमा है, तो मैं उनके साथ रास करूं। तो भगवान की आयु केवल 8 वर्ष और गोपियों की आयु 5 या 6 वर्ष, उनसे भी कम। तो जब छोटे बालक 8 वर्ष के बालक खेलते कूदते हैं तो क्या उनमें कोई काम वासनाएं होती है? होती है नहीं। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था, इसमें ना तो गोपियों के हृदय में ना कृष्ण के हृदय में किसी भी तरह का भौतिक कल्मश नहीं था। 8 वर्ष के बालक और उनसे भी छोटी छोटी बालिका। तो पहला कारण तो प्रभुपाद यही बताते हैं। दूसरा कारण कोई कह सकता है कृष्ण ठीक है 8 वर्ष के बालक थे, लेकिन हम जानते हैं कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। जब 7 वर्ष का बच्चा गोवर्धन उठा सकता है तो 8 वर्ष में वो कुछ कामुक वासना भी ला सकता है, तो गड़बड़ है, ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये कुछ भी उत्पाद कर सकता है। तो ठीक है, तो इस बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण आप काम है। हम में से किसी को भी कोई जरूरत पूरी करनी होती है तो हमें किसी बाहर के साधन पर निर्भर रहना पड़ता है। भूख लगी तो बाहर से खाना चाहिए, प्यास लगी तो बाहर से जल चाहिए। अगर एक पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर का ही ऐसा सिस्टम हो कि अपने आप ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, भूख लगे अपने आप जीवा भी तुष्ट हो जाए और पेट भी भर जाए, संतान उत्पन्न करने हो तो नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं पड़ी गर्भोदक्ष विष्णु को। तो ये है आप्त काम, जो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। जब कृष्ण नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रीनाथ वहां पे तपस्या कर रहे थे, इंद्र को बहुत असुरक्षा हो गई, इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी उनको मोहित करने के लिए। नारायण मुस्कुराए और अपनी जंगा से उरु से एक अप्सरा उत्पन्न कर दी जो उन सब अप्सराओं से बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनका नाम था उर्वशी। तो बोलो ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना इंद्र को, इसको भी ले जाओ। आप तो काम, उनको कोई भी भौतिक इच्छाएं सताती नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो 8 वर्ष के बालक अपने आप में पूर्ण, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गोपियों पर निर्भर नहीं है। तो ये दूसरा कारण प्रभुपाद जी देते हैं कि ये रासलीला किसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने नहीं की। आगे फिर ये कोई कह सकते हैं, मान गए कि कृष्ण असाधारण बालक हैं और आप्त काम भी हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह का वातावरण है। चांद खुला हुआ है, चंद्रमा की लालिमा है, चमेली के फूल की सुंदर महक है, शीतल शीतल वायु चल रही है, और किनके बीच में है वो? इस सृष्टि की सबसे सुंदर युवतियों के बीच में। तो हो सकता है वो उत्तेजित हो जाए, उत्तेजनात्मक वातावरण है, हो सकता है वो उत्तेजित हो गए हो। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और श्री प्रभुपाद जी इसको वर्णन करते हैं, नहीं वो उत्तेजित नहीं हो सकते इस वातावरण से भी, क्योंकि वो यदुपति है। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जमुना गोविंद संग्राम रानी की, वो यदुपति हैं। पति का क्या अर्थ होता है? बोलेंगे हस्बैंड, राष्ट्रपति राष्ट्र के हस्बैंड, सेनापति पूरी सेना के हस्बैंड। पति का अर्थ है पालन करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला, नियंता, स्वामी। तो कृष्ण जितने भी यदुवंश के राजा हैं उन सबके स्वामी हैं, उन सबके नियंता हैं। यदुवंशों के जो राजाओं का चरित्र बिल्कुल निष्कलंक रहा है, तो उनके जो स्वामी हैं उनका चरित्र में कैसे कलंक आ सकता है? यदुवंशों को तो छोड़िए, जो कृष्ण के भक्त हैं अर्जुन, जब वो स्वर्गलोक में गए तो स्वर्ग की अप्सरा, सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उनके पास आई और कहा, तुम युवक हो, सुंदर हो और ये अच्छा वातावरण है, क्यों ना हम आपस में मिले। उर्वशी के सपोजल को सुनकर अर्जुन ने तुरंत उनको प्रणाम कर दिया, नहीं माता जी, सोचिए ना, हमारे कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं बाहर में, तो कोई यंग लड़की को पुस्तक देते हैं, बोले कितने की, 110 रुपए की माता जी, तो बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस होता है उनको। तो अब उर्वशी को कैसा एक्सपीरियंस होगा, उर्वशी को इतना क्रोध आया, उनको श्राप दे दिया, बोला जाओ तुम हिजड़े बन जाओ। तो अर्जुन ने उसको स्वीकार किया और वो विराट देश में गए और वहां पे उन्होंने उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। जब बाद में उनको मालूम चला, नहीं नहीं ये प्रतनाल नहीं, ये तो स्वयं अर्जुन है, क्षत्रिय, परम क्षत्रिय अर्जुन, तो विराट नरेश ने अपनी पुत्री का हाथ उनको देना चाहा। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा ये मेरी शिष्या है, शिष्या पुत्री के समान होती है, इसको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उन्होंने उनके साथ किया। ये अर्जुन का चरित्र था। उनको उर्वशी ने उत्तेजित किया, उत्तेजित नहीं हुए। उनको सुंदर उत्तरा का हाथ दिया जा रहा था, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अर्जुन जो कि कृष्ण के भक्त हैं, उनका ये चरित्र है, तो स्वयं कृष्ण के चरित्र में कैसे कोई कलंक हो सकता है। तो ये तीसरा कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण यदुपति हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा भौतिक कलमश नहीं आ सकता। चौथा, इस रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में कौन कर रहा है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को सुव्रत बताया जा रहा है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप सुव्रत हो। सुव्रत का अर्थ है जिनका व्रत बड़ा दृढ़ होता है, जिनका वचन पत्थर पे लकीर के समान होता है। हम सब जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी अपनी मां के गर्भ में कितने वर्ष रहे, 16 वर्ष। क्यों नहीं बाहर आ रहे थे? हाँ, डरते थे कहीं माया का प्रभाव ना पड़ जाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और उनको आश्वासन देना पड़ा, बाहर आइए, मेरी शक्ति माया आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं करेगी। भगवान के कहने पर वो बाहर आए, फिर भी घर में नहीं रुके, रिस्क नहीं लिया। भगवान ने आश्वासन दिया, फिर भी मां के घर से निकलते तुरंत भाग पड़े नग्न अवस्था में। और उनका इतना सुंदर सुडोल शरीर था, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, घुंघराले बाल थे, कमल के समय नयन थे, सारे शरीर में एकदम सुडोल, 16 वर्ष के युवक, और नग्न अवस्था में भाग पड़े और व्यास देव उनके पीछे पीछे भाग रहे, अरे पुत्र सुनो सुनो, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, रुक जाओ। और सुखदेव गोस्वामी भागते जा रहे हैं, व्यास जी को कुछ उम्मीद। तब रास्ते में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं तालाब में, सुखदेव गोस्वामी भाग गए, उनको कुछ फर्क नहीं चल हुआ। और जैसे व्यास देव जी उनके पास आने लगे, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास देव जी को बहुत अपने आप को अपमानित महसूस किया, बोले पुत्रियों मैं तुम्हारे दादा के समान हूं और अभी मेरा लड़का नग्न अवस्था में युवा भागा, आपको कुछ शर्म नहीं आई, मुझसे आपको शर्म? बोले तो हमें पता ही नहीं चला, उनके तो ऐसे हाव भाव थे जैसे उनमें उन्होंने कोई स्त्रियों और पुरुष में विभेद देखते ही नहीं थे, लेकिन आप तो दूर से थोड़ा हिचकिचाए, यानी कि आप हमें स्त्रियों के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे सुव्रत सुखदेव गोस्वामी, अगर ये रासलीला केवल भौतिक काम वासनाओं की पूर्ति के लिए किया हुआ कोई कार्य होता, तो श्रीमद् भागवतम में जबकि परीक्षित महाराज अपने प्राण त्यागने वाले हैं, उनको क्यों सुनाएंगे? निश्चित रूप से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इसी ढंग से हम देखते हैं शक गोस्वामी अपना सब कुछ त्याग कर, यत्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत, सब कुछ त्याग कर भिक्षुओं की तरह वृंदावन में भटक रहे हैं। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें राधा कृष्ण की लीलाओं का, गोहितम लीलाओं का वर्णन है विस्तार में, वो क्यों ऐसा लिखेंगे अगर ये लीलाएं केवल साधारण काम वासनाओं के लिए होती। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भी कहते थे कि एक काश की पुतली को देखकर ही मैं उत्तेजित हो जाता हूं, वो अंत्य लीला में गंभीरा में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ भगवान की अंतरंग लीला की चर्चा क्यों करेंगे? इसका मतलब ये बहुत विशेष है। ये कौन सा कारण था? चौथा। पांचवा, हम देखते हैं भगवान के नाम लेने मात्र से पापी से पापी, अधम से अधम जीव शुद्ध हो जाता है, तो स्वयं भगवान शुद्ध नहीं करेंगे, उनमें कोई कैसा कलमश हो सकता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व वस्तु गतो पिवा या स्मरे पुंडरीका अक्षम सह भाय अभियंतरा शुचि। केवल पुंडरीकाक्ष कृष्ण के स्मरण मात्र से भी कोई कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपवित्र या पवित्र स्थिति में, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है स्मरण मात्र से ही। तो फिर स्वयं कृष्ण तो पूर्ण रूप से परम धर्म परम धाम पवित्रम परम भव। अब देखिए, अगर आपके घर में एक गलती से किसी बच्चे से दाल गिर जाए जमीन पर, तो आप किस कपड़े से उसको साफ करेंगे? साफ कपड़े से ही साफ करेंगे ना, गंदगी जो है साफ कपड़े से ही साफ होगी ना, कोई गंदा कपड़ा हो उसे तो साफ करेंगे नहीं। इसी ढंग से हमारे हृदय में इतनी मलिनता है, केवल कृष्ण ही उसको साफ कर सकते हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तो ये पत्राणी विद्रोति सुहित सताम। भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में घुसकर उस जो कलमश को साफ करते हैं। एक भक्त सुना रहे थे कि 1980s की बात है, अमेरिका में एक 14 साल का लड़का था और 14 साल की उम्र में ही उसने एक मर्डर कर दिया था, कई स्त्रियों का बलात्कार कर दिया था, ड्रग्स लेता था। 21 साल की उम्र तक उसने 7 मर्डर कर दिए थे, ड्रग पेडलर बन गया, स्मगलर बन गया, पुलिस की हिट लिस्ट में नंबर 1। तो एक बार पुलिस उसको चेस कर रही थी, भागता भागते भागते छिपते 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 वो एक फार्म में घुस गया और धीरे अंदर जाके मालूम चला उस फार्म में कुछ कीर्तन हो रहा है और वो फार्म था हमारा वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन। तो बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है छिपने के, यहीं छिप जाता हूँ। छिप गया, भक्तों को बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा वातावरण, उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया, बोले हाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। न्यू भक्ता बन गया, हेड शेव कर लिया, अब यहाँ पे रहना है तो सुबह उठना पड़ेगा, मंगल आरती में आने लग गया, जबरदस्ती माला पकड़ा दी कि जप करो, किसी ना किसी ढंग से जप करने लगा। गंदी आती उसको सताती थी, बेचारा सहन कर लिया क्योंकि कुछ भी मालूम चल गया तो पुलिस को ये इन्फॉर्म कर देंगे। 6 महीने तक उसने तपस्या की, भक्तों के साथ रहा, जो कहा उन्होंने करता रहा। 6 महीने बाद उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, बोले मैं क्या कर रहा हूँ, किनको धोखा दे रहा हूँ। वहां के सन्यासी के पास गया, उनको प्रणाम किया, बोले ये मेरा इतिहास है, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने धोखा दिया। उन्हें बोला कोई बात नहीं, पुलिस के पास जाके सब कुछ कबूल कर लो। पुलिस के पास गए, पुलिस हैरान हो गए, अरे इस रूप में और सब कुछ बता रहे हैं। उनको जेल में डाल दिया, कोर्ट में लेके जज के सामने, जज देखकर हैरान, अरे भाई, बोले क्या कैसा हुआ ये चमत्कार? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हें बोला अच्छा मैं आपको रिहा कर दूंगा, बस अपने जो आपके उस समय के साथी थे उन सबके नाम बता दो। उन सबके नाम बताए और उसको रिहा कर दिया गया, उसने आपकी दीक्षा ली और एक अच्छा भक्त। ये वास्तविकता है। शास्त्रों में अजामिल की कथा पढ़ते हैं, एक नारायण के नाम लेने मात्र से इतना पाप में उसका जीवन पूर्ण रूप से उसको शुद्ध कर दिया गया और वो भगवत धाम वापिस गया। तो हम भक्ति में अगर भक्ति की साधना को श्री प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को सही ढंग से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। इसमें इतनी शक्ति है, ये जो रासलीला है ये लीला भक्ति की शक्ति भी प्रदर्शित करती है। इतना ये भक्ति इतनी शक्तिशाली है, ये प्रोसेस इतना शक्तिशाली है। एक बार बहुत पहले हमारे को एक ईमेल आया, उसमें एक स्टोरी थी एक क्रिश्चियन लेडी की। उसको बहुत पायस लेडी थी, वो हमेशा चर्च में जाती थी, सब प्रार्थनाएं करती थी। उसको कैंसर हो गया और अंतिम अवस्था में उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कैसे आपका अंतिम संस्कार किया जाए? तो बोले जब कॉफिन में आप मुझे डालेंगे तो मेरे दाएं हाथ में बाइबल होनी चाहिए और बाएं हाथ में फोक होना चाहिए। अरे बाइबल तो सबने आता है, ये फोक क्यों? कुछ फीस थोड़ी होगी वहां पे। बोली फोक इसलिए मैं जब भी कहीं रेस्टोरेंट में जाती थी या चर्च में आके जो हमें मिलता था खाने को, तो जब भी वेटर आके उठा चले जाता सामान, उसके बोलता था मैडम कीप द फोक, फोक अपने पास रखिए, क्यों? इसके बाद कुछ अच्छा डेजर्ट आने वाला है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे आपने बाइबल क्यों? कहते अगर आप बाइबल या अपने धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जियेंगे देन समथिंग बेटर इज अबाउट टू कम। अगर हम गीता और भागवतम के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन अमृत तत्व को प्राप्त होगा और निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। तो ये भगवान के नाम में जब इतनी शक्ति है तो भगवान में कैसे नहीं होगी पवित्रता। तो ये रासलीला पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें रंच मात्र भी भौतिक इच्छाओं का कोई कलमश नहीं है। छठा जो तर्क है, कोई कह सकता है कि आपने उदाहरण दिया कि अगर पृथ्वी पे कुछ गंदगी फैल गई तो साफ कपड़े से उसको साफ कर दिया, कपड़ा तो गंदा हो गया, तो कृष्ण के संपर्क में कोई गलत चीज आएगी तो कृष्ण दूषित हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? कृष्ण अपाप प्रधान है। कृष्ण का उदाहरण किससे देते हैं? कृष्ण प्रभुपाद सूर्य से। सूर्य अगर समझ लीजिए इतर के शीशे गिर गए तो सूर्य किरणों में कोई सुगंध आती है, या फिर किसी मूत्र को उन्हें सुखाया तो क्या कोई गंदगी आती है? नहीं, सूर्य वैसे के वैसे रहते हैं, उनकी स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान भी कहते हैं नामे कर्तव्य त्रिशु लोकेशु किंचन नाना वाप्त वाप्तम वर्ते वच कर्मणी। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ना तो मेरी कोई चाहत है ना कोई मेरी आवश्यकता है, फिर भी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मैं नियत कार्य करता हूं। जब भगवान द्वारका में थे तो ग्रस्त जीवन में एक आदर्श उदाहरण स्थापित करते थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो कोई ग्रस्त बोले ठीक है मैं भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊंगा, जैसे जैसे भगवान करते वैसे वैसे करूंगा, तो फिर मेरे और भगवान में क्या अंतर है? मैं भी भगवान हूं, या तो मैं भी भगवान हूं या कृष्ण भी मेरी तरह साधारण जीव है। तो इस बात का खंडन करने के लिए कृष्ण कभी कभी जो अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं, कृष्ण स्वयं नियम बनाते हैं और अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं। समझ लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, समझ लीजिए टाटा कंपनी के मालिक को ले लीजिए, जब अपने ऑफिस में आएगा टेलको की फैक्ट्री में आएगा तो कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकता है, उसको गार्ड बोलेगा नहीं सीटी वगैरह नहीं यहां गाड़ी पार्क मत करो, नहीं कहीं भी पार्क सकता है। नहीं कोई जो साधारण एम्प्लॉय है क्या उसको ये छूट है? उसके लिए स्पेसिफाइड जगह वहीं उसको पार्क करना है। तो भगवान स्वयं नियम तोड़ते हैं दो बातों को स्थापित करने के लिए कि हे जीव तुम में और मुझ में बहुत अंतर है, मेरी रासलीला की नकल करोगे ठीक है, उससे पहले गोवर्धन उठा के दिखाओ। कई लोग रासलीला की निंदा करते हैं, अगर निंदा करते हैं इसका मतलब ये रासलीला हुई, जो चीज हुई नहीं उसकी निंदा क्यों करोगे? रासलीला हुई तभी तो निंदा करते हैं। और रासलीला का मालूम कहां से चलता है? भागवतम से। अगर भागवतम हुई रासलीला को आप स्वीकार करते हैं तो भागवतम में हुई गोवर्धन लीला को भी आप स्वीकार कीजिए। तो 7 साल के बालक ने बाएं हाथ की छोटी उंगली में पर्वत को उठा लिया 7 दिन के लिए, ये करके दिखाइए। चलो ये गोवर्धन पर्वत नहीं कागज का टुकड़ा ही उठा लीजिए, वो भी नहीं उठा पाएगा। और दूसरा, भगवान ने कितनी गोपियों के साथ रासलीला की? एक साथ करोड़ों करोड़ों गोपियां, और भगवान ने अपना विस्तार कर दिया। हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे ही साथ है, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। और तीसरा, भगवान की भगवत्ता देखें, रासलीला हो रही है अपने भक्तों को संतुष्ट करना है तो भगवान ने क्या किया? रात्रि की अवधि बढ़ा दी। कितनी बड़ी रात्रि होगी? ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान। ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी होती है? 430 करोड़ साल। और जब वो ब्रह्म मुहूर्त आया उस रात्रि के बाद गोपियों को ऐसा लगा अरे इतनी जल्दी रात्रि खत्म हो गई। 430 करोड़ साल तक भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते रहे बिना थके बिना कुछ किए, ना ही बीच में गोपियों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा। 430 करोड़ साल तक क्या हालत हो जाएगी बताइए? ये है भगवान की दिव्यता। इसलिए भगवान नियम तोड़ते हैं ये स्थापित करने के लिए कि तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। दूसरा, भगवान नियमों को तोड़ते हैं दूसरा कारण है अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने शपथ ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भी भीष्म जी ने शपथ ली कि मैं अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, तो भगवान ने अस्त्र उठा लिया। अर्जुन ने बोला आपकी शपथ तोड़ रहे हैं, जाने दो मेरी शपथ को, मेरे भक्त की शपथ बनी रहे, उन्होंने अस्त्र उठाया। तो भगवान नियम तोड़ते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपनी भगवत्ता को स्थापित करने के लिए। तो हम कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। तो ये कौन सा कारण था? सिक्स कारण था कि भगवान के नाम में जब इतनी शक्ति है तो स्वयं भगवान में कितनी प्रकारता होगी। सातवां, भगवान रासलीला रचाते हैं अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा तो भगवान को उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करें, और भगवान ने उनके वस्त्र भी हरे, और फिर भगवान ने सोचा अब उनकी इच्छाओं की पूर्ति का ये सही मौका है। दूसरा, हम देखते हैं त्रेता युग में भगवान राम जब तनकारण्य वन में गए तो बड़े बड़े आत्मसंयमी मुनि भगवान की सुंदरता को देखकर बोलते हैं हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मुनिगण इतनी सुंदर थे भगवान राम, मुनिगण कह रहे हैं पुरुष देह में है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कोई एक पुरुष किसी सुंदर से सुंदर पुरुष को भी देखे बोलेगा हम आपसे विवाह करना चाहता हूं, हमें समथिंग इज नॉट रॉन्ग, मतलब बोलेगा हमसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान बोला नहीं, अभी नहीं, आपके आपकी इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। द्वापर युग में भगवान उनको गोपियों का शरीर दिया, गोपियों का स्वरूप दिया, और उसके बाद उनसे रासलीला की। तो भगवान ये रासलीला रचाते हैं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो है सातवां। आठवां कारण श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत टेक्निकल रीजन दे रहे हैं कि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, गोपियों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, इतने अंतरंग क्षेत्र में चले गए तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और बाहर आके नृत्य करे तो ऑब्जेक्शन हो गया। प्रभुपाद जी बता रहे अंदर घुस के हृदय के अंदर तक घुस गए तब किसी ने कुछ नहीं बोला क्यों घुस गया किसी के हृदय के अंदर, सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, और बाहर आके नृत्य भी तो कर सकते हैं, तो क्या समस्या है? ये हुआ आठवां कारण। नौवां थोड़ा कठोर कारण है, थोड़ा हृदय संभाल के सुनिए और प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य नहीं कर रहे, दूसरे लोग कृष्ण की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ठीक है ना? बोले कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य नहीं कर रहे, ये आम जनता कृष्ण की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, शर्म किसको आनी चाहिए? बोले आप कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह दिया आपने? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब गोपियां नृत्य कर रही हैं कृष्ण के साथ, गोपियां अपने आध्यात्मिक देह के साथ नृत्य कर रही हैं। कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा जब उनके पति और भाई पिता उनको घर से निकलने के लिए मना कर रहे थे तो कृष्ण ने अपनी योग माया से उनकी एक भौतिक शरीर भी तैयार किया, वो भौतिक शरीर घर में ही रह गया और जो आध्यात्मिक असली शरीर था वो कृष्ण के साथ रास नृत्य कर रहा है। तो क्या समस्या है? जब एक आध्यात्मिक चिन्मय शरीर दूसरे आध्यात्मिक चिन्मय के साथ मिलता है तो उसको प्रेम कहते हैं, और एक भौतिक शरीर से मिलता है उसको काम कहते हैं। जब भौतिक शरीर से मिलता है तो एक नया भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, लेकिन आध्यात्मिक चिन्मय में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रास नृत्य के बाद गोपियां गर्भवती हो गई। ये इस सारे के सारा ताम झाम भौतिक जगत की सिरदर्दी है, जिससे मालूम चलता है कि हमें यह अधिकार नहीं है। ये कृष्ण की सब शक्तियां हैं, और जब ब्रह्म मोहन लीला हुई तो कृष्ण ने अपना विस्तार सभी ग्वाल बालों में कर लिया, और तभी पूर्णमासी ने कहा यह सबसे अच्छा मौका है, सभी गोपियों का विवाह इसी समय हो जाना चाहिए, इससे सुंदर मुहूर्त और कुछ नहीं होगा, विवाह किनके साथ करेंगे? ग्वाल बालों के साथ। सारे ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण ही थे। तो सब गोपियां किसकी पत्नी हो गई? कृष्ण की पत्नी। बाद में जब उनका विवाह हुआ तो फिर वो क्या था, वो तो एज ए केयर टेकर उनकी रक्षा कर रहे थे, वास्तव में सबके सब कृष्ण की पत्नी है। और आप सांख्यों की दृष्टि से भी देखें तो ये शरीर अष्ट तत्वों से बना है। ये क्या है? भगवान के भौतिक शक्ति है। इसके अंदर क्या है? आत्मा है, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो फिर सब कुछ तो भगवान का ही है। तो सब कुछ, हम सब कृष्ण की प्रकृति है और कृष्ण ही वास्तव में हम सबके पति हैं। इस संसार में जो पति पत्नी हम बनते हैं तभी बोला गया है धर्म पति और धर्म पत्नी, कि दोनों मिलकर धर्म के लिए हैं, हम कृष्ण से प्रेम करने के लिए हैं, ना कि एक दूसरे के मोह में फंसने के लिए। तो ये था नवा कारण। दसवां कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण जब भी अवतरित होते हैं वो सर्व आकर्षक है, सबको अपने प्रति आकर्षित करते हैं। कृष्णा पुस्तक के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार में तीन श्रेणी के लोग हैं। पहले जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, तीनों गुणों से मुक्त, ऐसे आत्मा राम लोग भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं। और दूसरे मुमुक्षु, जो कि मुक्ति के पथ पे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, वो भी कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित होते हैं। और तीसरे हैं कठोर भौतिकवादी, हमेशा भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त, इनको भी कृष्ण आकर्षित करते हैं। कैसे? रास लीला के माध्यम से। यहां तात्पर्य में लिखा जा रहा है अक्सर कोई लड़का लड़की आते हैं कृष्ण के पास कि हमारा उससे मामला सेट हो जाए। कई बार हमें एक शिष्य में हमारे थे, वह एक भक्त मिले थे, हमसे कैसे पूछते हैं ना कि आप कैसे आए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, पूछते हैं अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं, तुमसे पूछा आप कैसे आए, कहते मैं तो आया था कृष्ण के पास एक प्रार्थना लेके कि मेरी भी आपकी तरह बहुत गर्लफ्रेंड्स हो और आप ही इसके लिए आदर्श भगवान है, और कोई नहीं दे सकता अपनी गर्लफ्रेंड्स जितनी आप दे सकते हैं। तो यहां लिखा जा रहा है कि जो रोमांस है इस भौतिक जगत का, यही इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है, पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण। उस आकर्षण को अपनी तरफ लाने के लिए कृष्ण ने यह रासलीला की। एक भौतिकवादी व्यक्ति जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है केवल मैथुन का सुख प्राप्त करना, जब उसको मालूम चलता है कि कृष्ण ने क्या सुख प्राप्त किया, एक नहीं 16,108 रानियां और पर स्त्रियों के साथ नृत्य, ये है आइडियल हमारा, तो क्यों ना इनकी भक्ति की जाए, इनके बारे में जाना जाए। काफी वर्ष पहले साउथ दिल्ली में पंचशील पार्क में दिवाली का मेला लगा था, तो हम लोग यूथ फोरम की तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टॉल लगाया था। तो किताबें हम बांट रहे थे तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है कोई अच्छी सी पुस्तक दो। तो मैंने उसे आपने कृष्णा पुस्तक रख दी, हाँ ठीक है लेकिन कुछ और। तो मुझे समझ नहीं आना है क्या, तो थोड़ा और कोने में ले गया मुझे, कृष्ण की जो गोपियों के साथ राधा जी के साथ, वो इसमें सब मिलेगा, खोल के देगा, कहता इसमें कुछ लग नहीं रहा, मैं पहले इसको पढ़िए फिर वहां तक भी पहुंच जाए। कि वो व्यक्ति इतना इंटरेस्ट ले रहा था उन पुस्तकों को ढूंढने के लिए। तो भगवान ने रासलीला की कि जो आपका रोमांस का जो ऑब्जेक्टिव है उनको इस संसार के लोग ना होके आप मेरे साथ रोमांस कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की विशेष जो योगदान है, उन्होंने बताया कि इवन द गॉड हैज सेक्स लाइफ, ये कंसेप्ट आप किसी और धर्म में जाएंगे बेहोश हो जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में वो देखते हैं परम शक्तिशाल अल्लाह दिगार, गॉड इज ग्रेट, इतना बहुत है, हम बता रहे नहीं उनकी सेक्स लाइफ भी है और आप उनकी सेक्स लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो ये कैसे भगवान है? ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये है हमारा सनातन धर्म। भगवान एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, जन्मादि यस्य यथा, कुछ भी उनसे बाहर नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा। एक एटम भी इस सृष्टि का कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जब हमारे अंदर एक काम आसना है, इसका जो मूल स्रोत है वो आदि रस है जो आध्यात्मिक जगत में है। इस संसार के जितने भी संबंध है वो आध्यात्मिक जगत की विकृत छाया है। असली प्रेम, असली मित्रता, असली संबंध वो आध्यात्मिक जगत में है। ये बात अगर हम समझ जाएं तो हमारे जीवन से कुंठा दूर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रीजन, हमें जिसकी मानसिकता पूर्ण रूप से काम वासनाओं से पूरित है वो भी कृष्ण की रासलीला से आकर्षित हो जाता है। तो ये दसवां कारण। ग्यारहवां कारण, अगर आज इस भागवतम क्लास में सचिन तेंदुलकर आ रहा होगा समझ लीजिए, या मिस इंडिया कोई आ रही होती तो क्लास में कितनी भीड़ होती, बाहर तक भीड़ होती, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम करना पड़ता। मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी आ रहा है इसका मतलब यहाँ कुछ स्पेशल है ना? तो रासलीला में कौन कौन व्यक्ति भाग लेना चाहते हैं, कौन कौन भाग लेना चाहते हैं, कौन? लक्ष्मी जी। जिस लक्ष्मी जी के पीछे पूरी दुनिया भागती है वो स्वयं लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रहे हैं कि मुझे एंट्री मिल जाए रासलीला में। कोई खास बात होगी ना, लक्ष्मी जी इतने उत्सुक क्यों है रासलीला में भाग लेने के लिए? और नारद मुनि जी सन्यासी बैरागी, वो कृष्ण और गोपियों की रासलीला में क्यों भाग लेना, आपको क्या मतलब आप बैरागी हैं? नहीं, मैं भी लूंगा भाग। तो वो कुसुम सरोवर में स्नान करते हैं स्पेशल नारदी मुन गोपी बन के भाग लेते हैं। स्वयं शिव जी, पार्वती जी उनको उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित नहीं होते, जंगा पे बिठा के धर्म वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं भागवतम से, बोलते नहीं मैं भी रासलीला में भाग लूंगा। इसका मतलब ये बहुत उच्च, बहुत ही उत्कृष्ट लीला है, जब इतने बड़े महान विभूतियां रासलीला में भाग लेने के लिए उत्सुक है तो ये रासलीला कोई साधारण लीला नहीं है। इसलिए भगवान ने परम करुणावश ये रासलीला की ताकि हम किसी न किसी ढंग से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएं और जो हमारे हृदय की गंदगी है वो दूर हो। इस रासलीला के श्रवण और कीर्तन में श्री प्रभुपाद जी तीन चेतावनियां देते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, कभी भी इसकी नकल ना करें। प्रभुपाद कहते हैं जो रासलीला की नकल करते हैं वो रासलीला नहीं वो रासकल लीला है, कभी नकल ना करें। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस सिद्धांत को सही ढंग से समझ के इसको जन साधारण में समझाएं। अक्सर हम जब भी प्रचार करने के लिए जाते हैं लोगों के पास ये उसे कहते हैं ना एस होता है, रासलीला क्योंकि ये बताइए, और नया भक्त उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें पूरा सुस्पष्ट होना चाहिए कि कृष्ण की क्या दिव्य स्थिति है। तो कभी भी हम रासलीला की नकल ना करें, रासकल लीला है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं रासलीला श्रवण करने की योग्यता क्या है, किसको योग्यता, कौन योग्य माना जाएगा। योग्यता केवल एकमात्र है कि उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और तीसरा, किससे सुनना चाहिए, प्रमाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, अनुश्रवणा, जो कि गुरु परंपरा से प्रमाणिक परंपरा से हो उसी सोर्स से सुनना चाहिए, किसी और सोर्स से नहीं। तो इन तीन चेतावनियों का प्रभुपाद जी बताते हैं। और अगर कोई इस रासलीला को ध्यान पूर्वक विनम्रता पूर्वक सुनता है तो उसको क्या परिणाम मिलता है, ये देव गोस्वामी बता रहे हैं। इस रस पंचाध्याय के अंतिम श्लोक में विक्रीडितम व्रज वधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वतो अनुश्रुणा यादक वर्णये भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदगमाश पहिनोत्यचिरेण धीरा। जो कोई वृंदावन की युवा गोपिकाओं के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, पराम भक्ति। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा, धीर बन जाएगा, उसके हृदय से सारे कलमश दूर हो जाएंगे और हृदय रोग रूपी काम वासनाओं को जीत लेगा। तो ये श्रद्धा पूर्वक अगर हम सुनेंगे या उसका वर्णन करेंगे तो ये उसका आशीर्वचन है। तो आगे आने वाले चार पांच दिनों में इस रासलीला का वर्णन किया जाएगा। आज हमने सोचा कि इस रासलीला को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कैसे सुना जाए, क्या इसकी दिव्य स्थिति है। श्री प्रभुपाद जी 29वें अध्याय में कृष्ण के लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू रासलीला, पहले ये परिचय देना अति आवश्यक है, क्योंकि जो चीज हम सुनने जा रहे हैं वो अति उत्कृष्ट है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। हरे कृष्ण। इसलिए कोई प्रश्न
बताया वाकई में डिफिकल्ट टॉपिक है। आपने स्टार्टिंग में मुझे एक स्टेटमेंट उसी से क्लोज भी किया कि जो कि सुनने की प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं, सब बहुत मासूमाना सवाल है कि क्यों सुनना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस इफ इट्स एन इंफॉर्मेशन, आई मीन और इंफॉर्मेशन अगर ठीक है तो कहीं से भी आ रही हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज अवर एज।
आपका कहना यह है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तो इन्फॉर्मेशन है रासलीला, तो कहीं से भी सुन ले।
फैक्ट्स है?
नहीं, ये फैक्ट्स नहीं है, ये भगवान की लीलाएं हैं। जो जिसके हृदय में कृष्ण के लिए जितना प्रेम है, उसी प्रेम से, उसी चेतना से वो भगवान का वर्णन करेगा। तो जो वक्ता होती है उसकी चेतना हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो जब शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, और किसी कच्चे भक्त के मुख से सुनते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो जो कैरियर होना चाहिए पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। श्री भगवान जी बोलते हैं पोस्टल पीएन की तरह मैसेज डिलीवर करे, तभी वो मैसेज काम।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि किस तरह से हमें श्रवण करना चाहिए और कहाँ से सुनना चाहिए और क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए। प्रभु जो आपने दसवां कारण बताया था कि कृष्ण जो भी सर्व आकर्षक हैं और वो जो मुक्त पुरुष हैं उनको, और जो अभी मुक्ति के पथ में हैं उनको, और जो भौतिकतावादी हैं, तो विशेष रूप से जो भौतिकतावादी लोग हैं तो वो जैसे उनके अंदर जो काम वासनाएं हैं और वो कृष्ण क्योंकि उन्हें आकर्षित करते हैं, तो वो इन रासलीलाओं को का वर्णन सुनने से या जो उनको इमिटेट करते हैं तो उससे वो कैसे फिर शुद्ध हो जाते हैं।
हाँ, जो कृष्ण रासलीला करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, गेट अट्रैक्टेड।
कोई आकर्षित हो रासलीला से रहना ही कृष्ण से।
हाँ, रासलीला से आकर्षित हो रहे हैं तो रासलीला कौन व्यक्ति कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। इसी ढंग से किसी ना किसी ढंग से वो भक्तों के संग में आते हैं। अगर समझ लीजिए तभी श्री प्रभुपाद जी ने कृष्णा पुस्तक दी सबसे पहले। प्रभुपाद जी ने भागवतम शुरू की थी फर्स्ट कैंटो, बीच में रोक के इन्होंने पहले कृष्णा पुस्तक लिखी, और कृष्णा पुस्तक पूरा दशम स्कंद है उसका साथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर्षित होता है और प्रमाणिक स्रोत से सुनना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। ये कृष्ण का एक तरीका है उनको आकर्षित करने के लिए। बाकी किसी चीज से वो इतने आकर्षक नहीं होंगे। बाकी हर किसी चीज को तो वो बोलेंगे ये तो कल्पना है, माइथोलॉजी है। अब जब वो राशि का सुनते हैं तो अगर उनको कल्पना भी लगे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ तो बात होगी, सो दे गेट अट्रैक्टेड। और अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु नहीं है तो उनका शुद्धिकरण भी होता है। और कई जो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं बोलते मैं भी करूंगा ऐसे, डंडे टिक टाइम, उनको भी कई जन्म लगते हैं स्थिति में आने के।
Yes, in Los Angeles there is painting made by devotee artists.
Los Angeles में painting एक भक्त ने बनाई थी उसको.
The Rasalila. It's in Prabhupada's room. It's his favorite painting actually.
और ये प्रभुपाद एक कमरे के अंदर थी और बहुत ही रासलीला की painting थी.
There the the gopis and Krishna, they only look about 8 years old or so, you know. These, any painting that where Krishna's looking 20 years old is not bona fide. They were just kids. And so, the, you know, the English word licentious? No. I mean, any dirty conception is imagination, dirty imagination. They're just kids.
तो उस रासलीला की पिक्चर में सिर्फ कृष्ण एक बच्चे के रूप में, गोपी और कृष्ण एक बच्चे के रूप में दिखते थे. जो भी कृष्ण की पिक्चर जो 20 साल से ऊपर है वो क्वालिफाइड नहीं है.
So there was nothing, not lust even, they were just children practically. And so the whole thing of something dirty about Rasalila is the dirty mind of the demoniac persons.
So Rasalila mein aisa bhi kuch kaam hua asma ko leke kuch bhi usme nahi tha. Jo ye sari jo hoti hai man ke, jo isme vasa nikalti hai, man ki vasa nikalti
hai. You said that the marriage of the coward boys and the gopis took place during Brahma Mahotsava Lila. So, but they also were just children, so they were married as children, is that right?
आपने जैसे ब्रह्म विमोचन लीला में बताया था कि कावड़ बॉयज जो थे कवालों की शादी गोपियों के साथ हुई थी, तो ये उस समय वो सब बच्चे थे.
हाँ जी, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में बच्चों की ही शादी कर दिया जाता है.
That's by explained by one of the Goswamis.
Prabhupada also mentioned.
Oh, they were just children when they got married. Well, during the Brahma Mahotsava, which place mentioned?
This Prabhupada is writing, children get married, and this Brahma Mahotsava Lila type, this Vaishnava Maharaj also mentioned here. And I think Bhishmachakra Thakur is Saradrashni also mentioned.
Thank you very much.
Hare Bol. Thank you.
मेरे दो प्रश्न थे. एक्चुअली पहला था कि अगर रासलीला का वर्णन अगर हम प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं तो बताया गया जो काम वासना है वो सारी खत्म हो जाती है हृदय में, परंतु अगर प्रमाणिक स्रोत से सुन के अगर ऐसा कोई परिवर्तन या अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इसका क्या कारण हो सकता है?
अच्छा प्रश्न है कि हम प्रमाणिक स्रोत से सुनने के बाद भी हमारा हृदय शुभ नहीं हो रहा तो इसका क्या कारण है? तो जो मैं समझ सकता हूँ उसका एक है कि पूर्ण श्रद्धा हो सकता है, श्रद्धा में कमी हो, और दूसरा ये भी बताया जाता है कि अगर हम हमारा माइंड बहुत उत्तेजित है और फिर हम ये लीलाएं पढ़ते हैं उसके बाद अगर और उत्तेजना बढ़ रही है तो फिर हमें नहीं सुनना चाहिए. आवर कंडीशन इज टू बैड. छोटे बच्चे को, एक साल के बच्चे को हम रबड़ी का महाप्रसाद नहीं खिलाते, उसके डाइजेस्टिव पावर, तो उसके लिए ज्यादा और अच्छा जप और अच्छा श्रवण करने का आवश्यकता है, पाल लीलाएं सुनने की आवश्यकता है, फिर हम आएंगे. सो वन थिंग इज शुड हैव कंप्लीट फेथ और पूरे सरेंडर के साथ सुनने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें.
दूसरा ये प्रति जो अक्सर सुनते हैं कि जो संकीर्तन लीला है और रास लीला से ही उसकी तुलना की जाती है, किस प्रकार से इसको समझना है?
संकीर्तन लीला से ये शिवा सांगन में जो नृत्य है उसको रासथली कहा गया शिवा सांगन में, और उसको रास लीला बताया गया है क्योंकि जो ऐसा कहा गया कि जो हम भी संकीर्तन कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो उस विरह के भाव को संतुष्ट करने के लिए, ये जो जो गोपियों का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उसका जो शाब्दिक रूप है वो हरे कृष्ण महामंत्र है. और जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम उस भावना से कीर्तन करते हैं तो सेटिस्फाइड चैतन्य महाप्रभु फीलिंग ऑफ सेपरेशन, सो इट बिकम्स रासलीला. इट्स माय अंडरस्टैंडिंग. महाराज,
यस, रिगार्डिंग प्रेमानंद question, so Srila Prabhupada addressed that, is that either purification or putrefaction. Putrefaction is an English word that means contamination like a sewer. So it depends on the individual, and you already said, if somebody becomes lusty by hearing about Krishna dancing with gopis, then they should not read. So that's the answer. You already given the answer, but I wanted to add what Prabhupada's words, purification or putrefaction.
So Prabhupada is translating the Sunni Bible and Batata, the other Shudhi Karan Hoga, Yato, Dushi Karan Hoga. So that Dushi Karan Hoga is for Rogue Denachi, just the Apostle mentioned that they can have Prabhupada in the action Shabdu Batanacha.
Topsa Bakana Baba Daneva, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आने वाली जन्माष्टमी महा महोत्सव की कृष्ण रास लीला की गोर प्रेमानंदे।